नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यूपीआई आधारित लेनदेन इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 20,64,000 करोड़ रूपये हुआ। उत्तराखंड के टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में मूसलाधार वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा स्थगित। पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना चीनी ताइपे के चो तेन चेन से होगा। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से राष्ट्रपति भवन में 2 दिन के राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपालों का ये पहला सम्मेलन होगा।
सभी राज्यों के राज्यपाल इस बैठक में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन की कार्यसूची में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा चयनित क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल होगा। अभियानों में राज्यपालों की भूमिका और राज्य में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श होगा। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जापान की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नुकागा फुकिशिरो से भेंट की। श्री फुकिशिरो के साथ एक प्रतिनिधिमंडल और व्यापार जगत के प्रमुख भी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान से और अधिक निवेश के लिए भारत में अनुकूल वातावरण तथा किए गए सुधारों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने जापान के प्रतिनिधि मंडल को व्यापार के लिए भारत सरकार के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। इस बैठक में भारत और जापान के बीच मजबूत तथा वैश्विक भागीदारी, आपसी सहयोग पर चर्चा की गई। दोनों ही देशों के बीच संसदीय आदान प्रदान के महत्व पर भी बल दिया गया। जापान की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नुकागा फुकिशिरो ने भारत और जापान के बीच व्यवसायों में अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए जापानी भाषा, संस्कृति और कार्य प्रणाली में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने इन प्रयासों में निजी क्षेत्र की भूमिका पर भी बल दिया। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में भाजपा को जाने पहल के अंतर्गत वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से भेंट की। श्री नड्डा ने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुएन फू ट्रांग के निधन पर शोक व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पिछले दशक में भारत और वियतनाम के बीच संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि पर चर्चा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री नड्डा ने वियतनाम के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में संबंध और मजबूत करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने दोनों देशों में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सुधार के लिए विशेषज्ञ और संसाधन साझा करने पर बल दिया। दोनों नेताओं ने भविष्य में भाजपा और वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के बीच शिष्टमंडलों के आदान प्रदान से पार्टी स्तर पर संबंध और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले में कल 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया। इस मामले में मुख्य आरोपी मनीष प्रकाश, सिकंदर यादवेंदु और 11 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। जांच एजेंसी ने सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्नत फॉरेंसिक प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज का उपयोग किया। इस मामले में कई अन्य आरोपी पहले से ही हिरासत में हैं। सेना ने पुलिस के साथ मणिपुर में बिष्णुपुर जिले के योंग मखोंग क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान 2 AK-47 राइफल, 1 स्नाइपर राइफल, 1 9mm पिस्तल और 3 ग्रेनेड जब्त किए। क्षेत्र में हथियारों और गोला बारूद की विशेष सूचना मिलने पर यह अभियान चलाया गया। बरामद वस्तुओं को जांच के लिए मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इससे पहले 17 जुलाई को इम्फाल पूर्वी जिले में तलाशी अभियान में भी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने निविदा आवंटन घोटाले में पंजाब कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया है। राज्य सतर्कता कार्यालय ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। निदेशालय ने भूषण आशु से मंडियों से अनाज के परिवहन संबंधी घोटाले में पूछताछ की। राज्य सतर्कता कार्यालय को जानकारी मिली थी कि स्कूटरों के नंबरों वाले वाहनों में अनाज ले जाया गया। भूषण आशु का नाम आरोपियों में शामिल किया गया है। उस पर फर्जी बिलों के जरिए 2 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ लेने का आरोप है। आशु कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे। यूपीआई आधारित लेन देन इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 20,64,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कल इस बारे में आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष दर वर्ष आधार पर यूपीआई लेन देन में 35% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई में कुल यूपीआई लेन देन 4% से बढ़कर 14,44,00,000,000 रूपये का हुआ। औसत दैनिक लेन देन 46,60,00,000 रूपये का रहा। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी मजबूत डिजिटल व्यवस्था और विश्व की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के अनुकूल नीतिगत पहल के कारण एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। उत्तराखंड में वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक रोक दी गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से यात्रा मार्ग पर फंसे 2,000 से अधिक लोगों को निकाल लिया गया है। कल हेलीकॉप्टर के जरिए भीमबली, रामबाड़ा और लिंचोली से लगभग 425 यात्रियों को बचाया गया। सोनप्रयाग और भीमबली के बीच फंसे 1,100 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने राहत शिविरों में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बुधवार रात को मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन से सड़कों, पुलों, पानी और बिजली की लाइनों तथा कृषि भूमि को व्यापक नुकसान पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड आपदा स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को राज्य में तेज वर्षा और भूस्खलन के बाद की स्थिति से अवगत कराया गया है। भारतीय वायुसेना ने चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य को पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। उधर केरल के वायनाड में भीषण भूस्खलन में मृतकों की संख्या 274 हो गई है। 187 घायलों का इलाज चल रहा है जबकि 107 लोग लापता हैं। 70 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं जहां 7,000 से अधिक लोगों को रखा गया है। एक रिपोर्ट।
भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में आज सवेरे से तेज वर्षा हो रही है जिससे तलाशी अभियान में बाधा आई। प्रभावित क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया है जहां मलबे के बीच और शवों की तलाश के लिए 40 टीम लगेंगी। प्रत्येक टीम में सशस्त्र बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियों के अलावा 3 स्थानीय लोग और 1 वन अधिकारी तथा डॉग स्क्वाड भी शामिल है। चालियार नदी के किनारे 40 किलोमीटर के क्षेत्र में भी शवों की तलाश की जा रही है। वायनाड से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
इस बीच चूरनमला में कल शाम 190 फुट लंबा बेली ब्रिज चालू कर दिया गया। वायनाड में इस पुल से आज सुबह भूस्खलन ग्रस्त क्षेत्रों में और अधिक सहायता कर्मी और सामग्री भेजी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केरल के वायनाड में भीषण भूस्खलन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। श्री बाइडेन ने आपदा प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी पत्नी की ओर से भी संवेदना प्रकट की। तेलंगाना में राज्य मंत्रिमंडल ने वायनाड में भूस्खलन के कारण जानमाल के नुकसान पर शोक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में दिवंगत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। मंत्रिमंडल ने प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना और जनसंपर्क मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि सभी पात्र परिवारों को आरोग्यश्री स्वास्थ्य कार्ड और सफेद राशन कार्ड अलग अलग जारी करने का फैसला किया गया है। खिलाड़ियों ईशा सिंह, निखत जरीन और मोहम्मद सिराज को हैदराबाद में मकान बनाने के लिए 600 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने की स्वीकृति दी गई। निखत और सिराज को ग्रुप 1 की नौकरी भी दी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों और अगले 3-4 दिन के दौरान मध्यवर्ती क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में कल तक तेज वर्षा जारी रहेगी। विदर्भ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भी कल तक अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरें।
स्वप्निल कुसाले के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के कांस्य पदक और लक्ष्य सेन की पुरुषों के बैडमिंटन सिंगल्स स्पर्धा की विजय को छोड़ दें तो गुरुवार का दिन भारत के लिए ओलंपिक में कोई खास अच्छा नहीं रहा। हॉकी के पूल बी के मैच में भारत की टीम बेल्जियम से 2-1 से हार गई। ये है मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह।
स्ट्रांग माइंडसेट है, आई थिंक हमने स्टार्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग किया था और डिफेंस से हमें कहीं ना कहीं और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ओवरऑल देखें तो डिफेंस भी हमने अच्छी की है। कार्ड होने के बावजूद भी हमने चांसेस क्रिएट किए हैं, तो आई थिंक हम अच्छे पेज पे।
हॉकी में आज भारत अपना आखिरी लीग मैच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 4:45 पर यह मैच खेला जाएगा। आज गोल्फ के पुरुष वर्ग की व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के दूसरे राउंड में शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर खेलेंगे। उधर शूटिंग के 25 मीटर महिलाओं के क्वालिफिकेशन राउंड में ईशा सिंह और 2 पदक जीत चुकी मनु भाकर वापस चैट्रू शूटिंग रेंज में होंगे। स्कीट स्पर्धा के पुरुष वर्ग में अनंतजीत सिंह नरू का भी अपना अभियान आज शुरू करेंगे। आर्चरी के मिश्रित युगल वर्ग में अंकिता भगत और धीरज बोमदेवरा अपना क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। सामने होंगी इंडोनेशियाई जोड़ी। महिलाओं के 78 किलो भार वर्ग में जूडो में भारत की तुलिका मान आज क्यूबा की इडालिस ओर्टेस से अपना बाउट खेलेंगी। उधर सेलिंग की पुरुषों की डिंगी में विष्णु सर्वनन अपनी तीसरी और चौथी रेस खेलेंगे। वहीं महिलाओं की डिंगी में नेत्रा कुमानन आज भी अपनी दूसरी और तीसरी रेस खेलेंगी। एथलेटिक्स स्पर्धाओं के दूसरे दिन आज महिलाओं की 5000 मीटर रेस के पहले राउंड में पारुल चौधरी और पुरुषों के शॉटपुट मुकाबले में तेजिंदर पाल सिंह तूर अपना ओलंपिक अभियान शुरू करेंगे। बैडमिंटन के पुरुषों के सिंगल्स वर्ग में लक्ष्य सेन के सामने क्वार्टर फाइनल में आज होंगे चाइनीज ताइपेई के त्यान चाओ। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस।
मध्य रेलवे ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि पर पदोन्नति दी है। रेलवे के महाप्रबंधक ने कल स्वप्निल कुसाले के लिए पहली आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 से शुरू होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस मैच में खेलेंगे। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को T20 श्रृंखला में 3-0 से हराया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कुशल भारत विकसित भारत अभियान के अंतर्गत कल प्रशिक्षुओं और लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। लखनऊ में सम्मान समारोह में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।
जो अभी बजट में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखे हैं कौशल विकास के, उसमें एक बार फिर राज्यों की बड़ी भूमिका होनी है और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप मॉडल में कई राज्यों में अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। मैं भी प्रोत्साहित करूंगा, यूपी में भी इस काम को आगे हम तीव्र गति से बढ़ाएं, कुछ जगह पायलट करें, प्रयोग करें, उनसे सीख लें और फिर उसको स्केल तक पहुंचाएं।
कश्मीर घाटी में श्री अमरनाथ दर्शन के लिए 1221 यात्रियों का जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। ये यात्री 54 वाहनों के काफिले में हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद फरहत। एससी और एसटी कोटे के भीतर नए कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, जनसत्ता सहित सभी अखबारों की खबर है। पत्र लिखता है 7 सदस्यीय पीठ ने 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को 6-1 के बहुमत से पलटा। देशबंधु की सुर्खियां, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एससी एसटी का उप वर्गीकरण कर सकती हैं सरकारें। अमर उजाला ने हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही की खबर सचित्र प्रकाशित की है। 22 की मौत, 54 लापता, सतलुज और ब्यास उफान पर, केदारनाथ यात्रा भी रोकनी पड़ी। अब स्वप्निल ने दिया देश को ब्रॉन्ज, ओलंपिक में पहली बार भारत की शूटिंग में हैट्रिक, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। बेरूत में मारे गए हिजबुल्ला कमांडर का शव मलबे से मिला, तनाव बढ़ता देख भारत ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पौष्टिक भोजन जुटा पाने में असमर्थ हैं अधिकांश भारतीय, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में कम लोग भूखे रह रहे हैं, लेकिन जंक फूड का चलन तेजी से बढ़ रहा है, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। सावन शिवरात्रि आज, 19 साल बाद दुर्लभ सहयोग, पंजाब केसरी की खबर है। पत्र लिखता है सड़कों पर कावड़ियों में भोले बाबा की भक्ति को लेकर मची धूम, समापन आज।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यूपीआई आधारित लेन देन इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 20,64,000 करोड़ रूपये का हुआ। उत्तराखंड के टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में मूसलाधार वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा स्थगित। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना चीनी ताइपे के चू तिएन चेन से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।